الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. تو اگر ہم پہلی والی بات کو لیں کہ مشرکین مکہ اس وقت کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعائیں کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ماننے والے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، اے نبی آپ اللہ سے دعائیں کریں. اسی طرح لوگ اس وقت بھی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے. مگر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اور مشرکین مکہ نے یہ جب کہا تھا تو اس وقت ان کو بھی نہیں فائدہ دیا. وہ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، جب یہ دعا کرنے لگے اللہ ہم سے یہ کھول دے دی، یعنی دور کر دے، ہٹا دے یہ عذاب، ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ان سے یہ عذاب ہٹ گیا، کہ یہ جو قحط سالی تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر دوبارہ ویسے ہی ہو گئے، کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے. اسی طرح جو لوگ قیامت کے قریب جب لوگ یہ کہیں گے، تو یعنی جب ان کے اوپر ایسا آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تو ہم سے دور کر دے، اب ہم ایمان لے آئیں گے، اب ہم ڈر گئے ہیں، اب یہ جب دیکھ لیں گے. لیکن اب ایمان لانا، اب مان لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب یہ بڑی نشانیاں آ جائیں گی. استغفر اللہ، انا لہم الذکرہ. اب کہاں ہے ان کے لیے نصیحت؟ اب ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ کیفہ کے معنوں میں ہے نا، کیا کیسے اب یہ نصیحت، یہ جب اس سے اب جا کے جب مانے تو کیا مانے. وقت جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس پہلے رسول تو آ چکا تھا نا، جس نے ساری مبین تھا وہ رسول، انہوں نے ساری باتیں کلیئرلی بتا دی تھی. اب جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اب مان جاتے ہیں، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ تمہارے پاس تو ایک رسول آیا جس نے ساری تمہیں باتیں بتا دی، تم نے تو اس کی بات پہ ایمان نہیں لے کر آئے. اس نے ہر چیز تمہیں ایکسپلین کر دی تھی، کلیئر کر دی تھی، تم تب بھی نہ مانے اور اس کی مخالفت کرتے رہے. اور بعد والے لوگوں کے پاس بھی اللہ کے نبی کا پیغام تو آ گیا نا، تو پھر بھی نہیں وہ مانے. اب تمہارا ماننے کا کیا فائدہ؟ اب تم جو ایمان لاتے ہو، اب تم کہتے ہو اب ہم نصیحت پکڑ لیں گے، اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھیں یہ جو نصیحت پکڑنا ہوتا ہے نا، زندگی کو سٹریٹ کرنا، یہ نہ سمجھیں کہ ساری زندگی ہمیں ایسا ہی موقع ملتا رہے گا، ہم کہتے رہیں گے ہاں جی ابھی نہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کسی نے آپ کے ٹائمنگ پہ نہیں چلنا کہ جناب آپ کو کب فرصت ملے گی، آپ بتائیے. آپ جب فارغ ہوں گی اور آپ کو جو ٹائم ملے گا نا، جس وقت آپ کو لگے گا کہ اب یہ ٹھیک ٹائم ہے، اس وقت ہم آپ کے لیے آ جائیں گے، ہم آپ کی ٹائمنگ سے چلیں گے. ایسا نہیں ہوگا، کوئی ہماری ٹائمنگ سے نہیں چلتا. اللہ کا نظام، نہ ہماری موت، نہ قیامت کا دن ہمارے ٹائمنگ سے نہیں چلے گا، نہ یہ نشانیاں ہماری ٹائمنگ سے چلنی. بلکہ نصیحت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا لے، ویل اینڈ گڈ. نہیں اٹھاتا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور مجھے موقع ملتے رہیں گے، اور یہ کہاں چانس جائیں گے، یہ تو یہیں پہ گھومتے رہیں گے، میرے ارد گرد ہی مجھ سے پوچھتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. ایک دن آپ چانس مانگیں گے، مگر چانس نہیں ملے گا. آج چانسز بکھرے پڑے ہیں میرے اور آپ کے راستے میں، ہم ان کو اگر آج اویل نہیں کرتے، ان اپرچونٹیز کو، ان باتوں کو، ان کو نہیں لیتے، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ٹھوکر مار کے ادھر کر دیتے، ٹھوکر ماری ادھر کر دیا، کتنی دفعہ ہمارے پاس چانسز آتے ہیں، ہم تو بچو ہی نہیں کرتے، وی ڈونٹ کیئر. ہمیں ایسے لگتا ہے پتہ نہیں یہی ملتے ہی رہنے ہمیں. जब मैं 60 साल की भी होंगी तब भी चांस मिलते रहने हैं मुझे, 80 की भी होंगी तब भी नहीं, क्या पता जब 60 साल की हूँ उस वक्त चांस मिले तो बिस्तर पे पड़े हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ना करे, क्या पता जब 80 साल के हूँ उस वक्त अकल भी सलामत हो के अकल ही मारी गई हो उस वक्त, और क्या पता कि जो 90 साल के हम होके सोचते हैं उस वक्त कर लेंगे ना हम, अभी तो चांसेस हैं उस वक्त भी तो होंगे, क्या पता 90 साल के होके हम जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर हो ही ना, 90 साल जब गुजरे तो हमारा हाल ये हो कि हम अब हमारे चांस ही बंद हो चुके हो, बुक हमारी बंद हो चुकी हो ना, जब अकल मारी गई थी तब कोई चांस बाकी रहता है ना, जब बिस्तर पे पड़ गए तब कोई चांस बाकी रहा, आज चांसेस हैं जब सेहतमंद है, अकल भी काम कर रही है, जिंदगी की मोहलत भी मिली हुई है, तब परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं कि क्या मुझे मिल रहा है, जैसे कि ये फॉर ग्रांटेड इनको लिया हुआ है, जैसे कि ये बस, जैसे हम कोविड में कितनी चीजों को हमने, हमें एहसास हुआ कि हमने फॉर ग्रांटेड ली नहीं थी, जैसे कि मिलना जुलना लोगों के साथ, लोगों के साथ बैठना, मिलजुल के खाना खाना, मुसाफहा करना, हैंडशेक करना, कहीं जाना आना, ऐसे लगते थे गोस्ट टाउन्स में हम रह रहे हैं, यहाँ पे कोई बंदा बशर ही नहीं है, सब ऐसे दुबक के बैठे हैं घरों में, दुख सुख में किसी के काम आना, उस सब कुछ खत्म हो गया था जिसको हम समझते थे ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, मस्जिदों में जाना, हवाई जहाज के सफर करना, शादियों में ब्याहों में एक दूसरे के साथ होना, कोई फौत हो जाए तो उसकी पास जाना, उसके या बीमार है तो उसके पास जाके ज्यारत करना, उसकी ताजियत करना किसी से, सब चीजों को हमने यही समझा था ना, अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया ना कि कभी ऐसा ना समझना कि चांसेस ऑलवेज रहेंगे, हालांकि ये तो हमें कुछ लगते ही नहीं चांसेस, ये तो हमें लगता ही नहीं कि कोई बड़ी बात है, ये तो हमें लगता है हमारी दाएं हाथ का काम है, यहां से वहां जाऊंगी उससे मिल लूंगी, उससे चली जाऊंगी उससे बात कर लूंगी, हाज उम्रे पे चली जाऊंगी जब मेरी मर्जी होगी, पैसे तो मेरे पास है, सब चीज बंद हो गई थी ना। इस मिसाल से मैं आपको बता रही हूं कि ये जो जिंदगी में अमल के चांस है ना, ये भी बंद हो जाते हैं एक दिन, दोबारा नहीं मिलते, इनको फॉर ग्रांटेड ना ले, आज बिखरे पड़े हैं ना ये हमेशा ऐसे बिखरे पड़े नहीं रहेंगे, आज आपको कोई पूछ रहा है ना आओ ये नेकी कर लो, आओ इसके अंदर हिस्सा ले लो, आओ ये काम करते हैं, आओ ये सुन लेते हैं, आओ अपनी जिंदगी को संवार ले, ये हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन ये आवाजें भी बंद हो जाएंगी, हमारे कान बंद हो जाएंगे, अमल का वक्त खत्म हो जाएगा, और किसी सूरत में भी हो, जिंदगी जाने की सूरत में, किसी कोमा में जाने की सूरत में, अकल के फिर जाने की सूरत में, किसी सूरत में भी हो सकता है, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला फरमाता है अन्ना लाहुम्मा जिक्रा, और देखें कयामत के दिन भी ऐसा होगा ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा, जब देखो जब जमीन कूट कूट के रेजा रेजा कर दी जाएगी और तेरा रब आएगा और फरिश्ते भी सफ दर सफ, वजी अयोम इदिन भी जहन्नम, उस दिन जहन्नम भी लाई जाएगी, यौम दीन या तज़क्करुल इंसान, इस दिन इंसान को याद आएगा, वह अन्ना लहू ज़िक्रा, वही वाली बात, अब क्या याद करने का फायदा, अब क्या फायदा, अब तुझे भूला हुआ सबक याद आया, अब जाके यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, उस दिन मारेगा अपने आप को, चबाएगा अपने हाथ, कहेगा हाय मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता, हाय काश मैंने कुछ किया होता, वो अल्लाह ताला फरमाता है अन्ना लहुमु दिक्रा, अब क्या है इनके लिए नसीहत हासिल करना, अब क्या फायदा, अब निशानी जब सामने आ गई, अल्लाह हु अकबर, सबसे ज्यादा हसरत इसी बात पे होगी, इंसान कहेगा काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, सुम्मा तवल्लौ अन्हु, फिर वो मुंह मोड़ गए उससे, किससे, इस रसूल से, वकालू मुअल्लम मजनून, फिर इन्होंने कहा ये तो सिखाया पढ़ाया दीवाना है, इसकी बातें हमने क्या सुननी है, सिखाया पढ़ा किसी ने इसको जी सिखा दिया, ऐसे ही आके हमें बातें बताता रहता है, मजनून है दीवाना है, इसी क्या सुननी है, मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी कहीं, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैंने लिखा हुआ था कि अगर हम सहाबा कराम के जमाने में चले जाएं, तो हम कहेंगे ये मजनून है, ये तो दीवाने हैं, इनको क्या हो गया? यानी उनको दीन की खातिर जो कुर्बानियां कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को खत्म करके रख दिया अल्लाह रसूल की खातिर, तो हमें ये लगेगा ये दीवाने हैं। और अगर वो हमारे पास आज आ जाए तो वो कहेंगे कि ये तो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो वो कहते थे ये तो मजनून है। इन्ना काशिफुल आदाब आदाबी कलीनन इन्नकुम आइदून, बेशक हम हटाने वाले अजाब को थोड़ा सा, बेशक तुम लौटने वाले हो। इन्हें अगर उस वक्त का कहा जाए तो अगर तुम्हें मोहलत मिल भी गई, तुम्हें अगर हम अजाब हटा भी देते हैं, ये कह दूर भी कर देते हैं थोड़ी मुद्दत के लिए, और तुम फिर वही करोगे, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है ना कि ये यही करेंगे, इन्होंने नहीं हटना। और वाकई यही हुआ ना। और दूसरा माना, अगर हम धुएं से लें कि भाई वो वाला अजाब, इसको लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ये धुआं दूर कर दे, ये दुखान दूर कर दे, हम तो बड़े बड़ी नसीहत ले लेंगे हम ये, तो उनको पहले तो कह दिया गया अब तो नसीहत का क्या फायदा, बड़ी निशानी कयामत की आ गई, अब तो सामने है कयामत, जब सूरज मगरिब से तलू हो जाएगा ना, तो कोई ईमान लाना किसी को फायदा नहीं देगा, फिर पे दर पे ये निशानियां पूरी होंगी। तो अब कहा जा रहा है कि अगर ये हम थोड़ी देर के लिए दूर कर भी देते हैं, इस अजाब को मौखर कर भी देते हैं, तो फिर ये उसी में लौट जाएंगे। अल्लाह ताला बता रहा है कि ये नहीं होगा कि अजाब लौटा दिया जाएगा, ये नहीं होगा कि वो खत्म हो जाएगा, मगर बताया जा रहा है कि अगर ऐसा अल्लाह ताला कर भी देना तो फिर भी ये बाज नहीं आएंगे, फिर भी ये शिर्क की तरफ लौटेंगे और वही काम करेंगे जो जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले हैं। और लोगों की हाल ये वाकई इस दुनिया में ऐसा ही रहा है कि, और आज भी है, वो उन्होंने भी यही किया था और आज भी है। हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, जब हम मुश्किल में होते हैं, अब हम अल्लाह ना करे किसी जहाज में बैठे हैं, जहाज हिलना शुरू हो गया, उफ एकदम हमें तो तौबा इस्तग़फ़ार याद आ जाती, कलमा पढ़ना शुरू हो जाते हैं, इस तरह करते हैं, फिर बस अल्लाह तौबा, अब मैं बस उतरूंगी तो बस अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी बदल लेनी है, बस अब बहुत हो गई, उसके बाद उतरते हैं उन्हें याद भी नहीं रहता, वो आगे लेने आए हुए हैं, चले गए घर, पार्टी टाइम शुरू हो गया और चलो बस खत्म, वो तो याद भी नहीं है कि जहाज में ऐसा हो। हाँ लोगों को बताते जरूर है, हाँ देखो ऐसा हो गया था, लेकिन ये नहीं याद रहता मैंने कोई वादे भी किए थे। इसी तरह आप देखते होंगे जब जब भी कोई जलजले की बात आती है तो क्या न्यूज आती, लोग अपने घरों से बाहर कलमा तैयबा का विर्द करते हुए निकल गए, तो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए उस वक्त तो याद आया, उसके बाद इस कलमे पे कितना चलना था वो नहीं याद है, उसके बाद अल्लाह तौबा कोई नहीं याद, हाँ मुसीबत आई तो कलमा तैयबा याद आया। इसी तरह जब हमें कोई हाजत होती है, हम कितनी दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह ये बीमारी दूर कर दे, मैं तो ऐसे हो जाऊंगी, मैं तो ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, मेरी बस जिंदगी अब उसके बाद तेरे लिए गुजरे, उसके बाद अल्लाह ताला सेहत दे देता तो क्या करते हैं? इस तरह अरे अल्लाह मेरे बच्चों की शादी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, बस इतनी उसके लिए मन्नतें मानेंगे, हज उम्रे पे दुआएं करेंगे, जब रिश्ता हो जाता है तो शादी के दिन करते क्या है, अल्लाह ताला याद रहता है, उसे पहले ही एक दर्स करा के बस फारिग कर दिया, अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह को तो फारिग कर दिया, बस अल्लाह तुझे खुश कर दिया ना, हमने ये दर्स हो गया, दुआए खैर जी रखी हुई है, वो भी किसमें क्या है जी, दुआ मांगे ये इनकी खुशियों के साथ जिंदगी गुजरे, उसके बाद सारी अल्लाह की नाफरमानी है, जिसके लिए से दुआएं कर रहे थे ना कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरे, आए आप आके दुआए खैर कर जाए, अभी एक नया ही ट्रेंड शुरू हो गया, दुआए खैर हो रही है, उसके बाद दुआए खैर के बाद वो अल्लाह की नाफरमानी, वो अल्लाह की वो नाच गाने और वो बेहयाइयां और वो मिक्स गैदरिंग्स और क्या क्या नहीं होता, तब अल्लाह नहीं याद रहता कि उसके हाथ में मेरी डोर है और उसके हाथ के अंदर है ये सब कुछ, इनकी खुशियां और इनकी जितना इस रिश्ते का कायम होना सब उसके हाथ में, मैं उसको नाराज कर लूं जिसे अभी मैं बैठी दुआएं कर रही थी। तो ये हमारा अमूमी रवैया है, हम देखें तो सही कि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, वजीफे भी हो रहे होते हैं, इस्तिग़फ़ार भी हो रही होती है, अल्लाह का बड़ा जिक्र भी, तस्बीहात इतनी लंबी लंबी, आयत करीमा के खत्म, वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसके बाद इन्नकुम आइदून, फिर तुम दोबारा लौटने वाले, जो ये मुश्किल खत्म हुई, बड़े अजाब को तो छोड़ें, ये छोटी छोटी मुश्किलों में भी हमारा हाल ये है कि हम वो सदे में पड़े रहते हैं, तहज्जुदे में शुरू कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस हमारा काम निकल आया ना, बस उसके बाद हमें क्या। वैसे हम लोगों को बहुत कहते हैं लोग बड़े मतलबी होते हैं, हम कितने मतलबी हैं, खुद सोचें हम कितने मतलब, दुनिया बड़ी मतलबी है जी, मतलब के लिए मिलती है, ये बहुत गिला करते हैं ना, कभी हम अपने गिरेबानों में भी झांक के हम कितने मतलबी हैं। अल्लाह अल्लाह बहुत याद आता है जिस वक्त हमारी कोई मुश्किल होती है, और उस मुश्किल टल जाए तो फिर अल्लाह कितना याद रहता है ये बताइए। ये नहीं कि अल्लाह ताला को याद नहीं करना मुश्किल है, बिल्कुल याद रखें, उसी ने तो हमारे काम संवारने, लेकिन उसके बाद भी तो वही अल्लाह है। क्या सोचते हैं कि ये एक ही मुश्किल थी, सांस बंद हो जाए तो वो भी तो एक मुश्किल है, वो सांस चल रही है उसका एहसास नहीं है कि वो भी तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, मैं तो हर वक्त ही गिरी रहूं उसके आगे। यौम नबतशुल बतशतल कुबरा, जिस दिन हम पकड़ेंगे बड़ी पकड़, अगर वो माना ले इसका कहत साली का, उनकी कहत साली का, दोनों माने हम लेके साथ चल रहे हैं ना, तो फिर जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे तो वो बड़ी पकड़ उनके ऊपर कौन सी आई, इन्ना मुंतकिमून, तो हम इंतकाम लेने वाले हैं, तो उनके ऊपर बदर में आई थी वो बड़ी पकड़, ये बदर में इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, बदबू आने लगी उनकी लाशों से भी, 70 बड़े काफिर, इसीलिए तो इनके घर घर मातम बिछ गया था और ये रोते फिर रहे थे कि हाय हमारे साथ क्या हो गया, ये अल्लाह ताला ने निशाने इबरत बना दिया कि कहां वो छोटी सी जमात जिसको तुमने एक्सपेल किया था मक्का से और उनको कुछ समझते नहीं थे, आज तुम्हारे इतने बड़े सरदार मारे गए, इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि हमारा इतना, वो तो इतने तकबर से जा रहे थे कि आज देखना हम मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा के रख देंगे, इतने तकबर साथ, गाने वालियां लगी हुई, नाच हो रहे, शराबें पी जा रही, कई कई ऊंट जिबा किए जा रहे हैं एवरी डे, और फिर खा रहे हैं पी रहे हैं और जैसे किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, यान क्या हमने इनको मसल के रख लेना, जैसे हाथी चूंटी को मसल देता है, ऐसे समझा हुआ था, लेकिन उनका हाल क्या हुआ होगा सोचें, जिस वक्त आन की आन में एक दिन में उनके 70 बड़े आदमी, ये छोटी बात नहीं है, इसीलिए उसको यौमुल फुरकान कहा गया, उसने फर्क कर दिया था कुफर और इस्लाम के अंदर। अब देखो ये इतनी सी 313 लोग, और कहां तुम 1,000 लोग आ रहे, ये इतनी सी जमात जिसके पास पूरे हथियार भी नहीं, कैसे तुम्हारे लोगों को भगा के रख दिया और बाकियों को कत्ल कर दिया और कैदी बना दिया, 70 कैद कर दिए गए, इनके लिए शेम का मकाम था, उस वक्त ही समझ वाले होते तो समझ लेते। तो कहा गया कि यौमा नबतुशुल बतशतल कुबरा, जिस दिन पकड़ेंगे ना हम बड़ी पकड़, तो इन्ना मुंतकिमून, तो हम इंतकाम लेने वाले, फिर तो हम तुमसे इंतकाम लेंगे, इसका बदला लेंगे जो तुम कर रहे हो। और अगर इसको कयामत के दिन से कहा जाए, हमने अगर धुआं लिया अलामत कयामत से, तो फिर जिस दिन कयामत आएगी ना, अभी तो धुआं ही है ना, जिस दिन बड़ी पकड़ आएगी ना उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी। हम फिर इंतकाम लेने वाले हैं, यानी सजा फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो आएगी कि फिर कोई बच ना सकेगा, एक दिन बड़ी पकड़ का दिन है। वलकद फतन्ना कबलहुम कौमा फिरऔन, मैंने आपको जैसे बताया कि इन हवामीम में सब में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जरूर आता है, तो इससे पहले हमने फितने में डाला, आजमाइश में डाला, फितने से मतलब क्या, आजमाना, इतना आजमाइश होती है, और आजमाइश कबला हम इनसे पहले कौमा फिरौन, कौमे फिरौन की, तो हम कहते हैं कौमे फिरौन तो बड़े ऐश के अंदर रहे, उनके तो बड़े बड़े महल्लात थे और वो तो बड़े, उनका उसका उनका डंका बजता था उस वक्त दुनिया के अंदर, के इतनी बड़ी इनकी सल्तनत और इनकी से के आगे कोई बोल नहीं सकता था, इन तहजीब तमद्दुन में इतने आगे थे, तो बड़े पावरफुल थे, तो फिर उनको कैसे आजमाइश में डाला गया। देखें आजमाइश हमेशा तकलीफों से नहीं होती, अल्लाह ताला नेमतें दे के भी आजमाता है, और इनकी आजमाइशें हुई कई तरह से हुई, अल्लाह ताला ने इनको नेमतें दी उससे भी आजमाइश हुई, फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर इनको मेंढक, खून, जुएं और जराद, रकुमर, तूफान, और इन सब चीजों से अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश भी इनकी की, इनके ऊपर ये मुसीबतें भेजी ताकि ये संभल जाएं, लेकिन ये नहीं संभली, तो अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश की थी, फिर इनको इतना कुछ दे के भी इनको आजमाया कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, फिर इनके ऊपर ये अजाब भेज के भी उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की, वजह हम रसूल करीम, और उनके पास हमारा रसूल आया था जो इज्जत वाला रसूल था। कौन मुराद है, कौन आया था कौमे फिरौन के पास? मूसा अलैहि सलाम। तो यानी मूसा अलैहि सलाम एक करीम रसूल कहा गया, इज्जत वाले। इज्जत वाले किस तरह से? अपनी कौम में भी इज्जत वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी उनके साथ कलाम करके। सबसे बड़ी बात ये कलीम उल्लाह थे, अल्लाह ताला ने उनको ये इज्जत अता फरमाई कि उनसे डायरेक्ट कलाम फरमाया। इस दुनिया के अंदर किसी से ऐसा नहीं किया क्या? फिर अल्लाह ताला ने उनको ऊपर अपनी किताब नाजिल फरमाई तौरात, और फिर करीम थे, इज्जत वाले थे उन अल्लाह ताला के। हाँ, उनकी बड़ी कद्रो मंजिलत थी, क्योंकि जो पांच उलुल अज्म पैगंबर हैं, पांच पैगंबर हैं जो यानी उलुल अज्म टॉप के हैं, वो अल्लाह ताला के नजदीक। वैसे तो पैगंबर और भी हैं, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको उलुल अज़्म पैगंबर कहा जाता है। तो ये उनमें से हैं, तो इनको अल्लाह ताला ने रसूल, इनकी तरफ अल्लाह ताला ने रसूल करीम भेजे, बड़े इज्जत वाले रसूल। और मूसा अलैहिस्सलाम में और भी बहुत सारी सिफात थी, और उनकी सारी सिफात को कि वो सब्र करने वाले भी थे, अल्लाह ताला पे तवक्कल करने वाले भी थे, और भी उनके अंदर बहुत सारी सिफात थी, लेकिन शुक्रगुजार भी थे बहुत ज्यादा, अखलाक में भी बहुत अच्छे थे। तो ये सारियों को एक वर्ड में समो दिया गया कि वो करीम थे। अन अद्दू इलैया इबाद अल्लाह, के हवाले कर दो अल्लाह के बंदों को मेरे, मेरी तरफ अल्लाह के बंदों को हवाले कर दो। अद्दू का मतलब क्या? पूरा पूरा हक अदा कर देना एक ही दफा। तो इनको मेरे साथ यानी भेज दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम दो मकासिद के साथ फिरौन के पास भेजे गए, और उसकी कौम के पास, तिब्बती कौम, फिरौन की कौम तिब्बती कहलाती है, मिस्री जो को ओरिजिनल वहां के थे। तो उनके पास दो चीजें दे के अल्लाह ताला ने भेजा, कि दो क्या मकासिद थे मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत के। एक, कि फिरौन को कहा जाए कि तू खुदा नहीं है, एक अल्लाह की इबादत कर, और दूसरा मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। अमीन क्यों कहा गया? क्योंकि रसूल तो सारे ही अमानतदार होते हैं, लेकिन यानी बताया गया कि मैं तुम्हारे पास वो पैगाम लेकर आया हूँ जो एज इट इज अल्लाह ताला की तरफ से है, उसमें मैंने कोई खयानत नहीं की, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, कुछ बना के नहीं तुम्हें पेश कर रहा खुद से। तो इसी में दीन की तालीम देने वालों के लिए भी मैसेज है कि जो भी अल्लाह का पैगाम आगे किसी को भी देने लगे, उनको चाहिए कि वो अमानतदार हों, हक को पहुंचाने में अपनी तरफ से बातें ना ऐड करते रहें कि मेरी मर्जी ये है तो मैं ये करूं, या मैं अपने फिरके को डिफेंड करने के लिए इस आयत को ट्विस्ट करके इसका मतलब ये से ये बयान करना शुरू कर दूं। नहीं, ये बहुत बड़ी अमानत है, इसके अंदर खयानत करना बहुत बड़ी यानी गुनाह की बात है। तो इसमें कोई कमी बेशी अपनी तरफ से नहीं कर सकते, ना रसूलों ने की, ना जो रसूलों का मिशन आगे लेकर चलने वाले हैं, जो दाई दीन है, उलामा है, वो भी इस चीज को समझें कि उन्होंने बात एज इट इज पहुंचानी है, अपने बायसेस, अपनी जो पसंद या नापसंद को एक तरफ रख दें, अल्लाह की बात को इंसानियत तक जैसे आई वैसे आगे कर दें। हमारा काम नहीं है कि हम उसके अंदर कुछ चीजें मिला मिला के और लोगों को जरा ज्यादा ज्यादा इसको किसी चीज को सीरियस करना या ज्यादा किसी चीज को हल्का करना, ये हमारा काम नहीं है। वा अल्लाह तालु अल्लाह, और ना तुम सरकशी करो अल्लाह के मुकाबले में। तुम किसके मुकाबले में आ रहे हो? वो तो तुम्हें अल्लाह की बात बता रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बात तो नहीं बता रहे। अब क्यों यहाँ पे इस कौम का जिक्र आया? क्योंकि मुशरिकी ने मक्का अपने आप को बहुत बड़ी चीजें समझते थे, तो उनको बताया गया कि देखो एक तुमसे पहले भी कौम गुजरी है ना, कौम फिरौन, उनके पास भी रसूल आए थे, फिर उन्होंने आके क्या फरमाया, और फिर जब इन्होंने नहीं माना तो इनका अंजाम क्या हुआ। ये सारी बात इस आज की जो अब रेस्ट ऑफ द लेसन है उसमें यही बात कही जा रही है कि तुम अल्लाह के मुकाबले में सरकशी करते। क्योंकि याद रखें, जो रसूल है या जो दाई दीन है या कोई आलिम दीन सच्चा वाकई हक पे जो है, वो आप तक जो बात पहुंचा रहा है वो उसकी बात नहीं है कि आप कहें हाँ हमने क्यों उसकी बात सुननी। हम खुद ही से अपनी बनाते फिर रहे हैं, ये मौलवियों की अपनी बनाई हुई बातें। कभी जो भी कोई